नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार और पश्चिम बंगाल में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। रेलवे आगामी त्योहारों के दौरान सुगम यात्रा के लिए 380 गणपति विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कहा, भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान का इस वर्ष दिसंबर में पहला उड़ान परीक्षण किया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 2 पर्यवेक्षक नियुक्त किए, नामांकन पत्रों की जांच आज होगी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भेंट की और डल झील में शिकारा चलाने वाले 17 वर्षीय मोहसिन अली ने श्रीनगर में खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में पहला स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार और पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। वे बिहार की गया में लगभग 13,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री 2 रेलगाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और एक सभा को संबोधित करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
प्रधानमंत्री आज बोधगया से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिन योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, उनसे बिहार में आर्थिक गतिविधियों, बुनियादी ढांचा को बढ़ावा मिलेगा और पर्यटन को मजबूती मिलने की संभावना है। 6 लेन वाले गंगा नदी मोकामा सिमरिया पुल के बनने से बरौनी रिफाइनरी और आसपास के क्षेत्र में कृषि आधारित तथा अन्य औद्योगिक विकास को तेजी मिलेगी। इस पुल ने उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार के बीच आवागमन सुगम कर दी है। बोधगया में कार्यक्रम को संबोधित करने के बाद प्रधानमंत्री इस मेगा ब्रिज को देखने या भी जाएंगे। स्थानीय लोगों ने पुल का नाम राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर रखने का आग्रह सरकार से किया है, जिनका जन्म इस क्षेत्र में हुआ था। राज्य में कैंसर के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए मुजफ्फरपुर में नव निर्मित भाभा कैंसर रिसर्च संस्थान लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने में मदद करेगा। बोधगया से धर्मेंद्र कुमार राय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अलका सिंह।
उधर पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री आज शाम कोलकाता में नव निर्मित खंडों पर मेट्रो ट्रेन सेवा का शुभारंभ करेंगे। वे जेसोर रोड मेट्रो स्टेशन से जय हिंद विमान बांदर स्टेशन तक स्वयं मेट्रो में यात्रा करेंगे। वे कोलकाता में 5,200 करोड़ रुपए से मूल्य से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे और उपस्थित जन समुदाय को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास की राह पर अग्रसर है, इसलिए पश्चिम बंगाल के लोग राज्य में इस बार भाजपा सरकार बनाना चाहते हैं। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हर गुजरते दिन के साथ राज्य में तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ जनता का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 2 पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। पंचायती राज मंत्रालय में अपर सचिव सुशील कुमार लोहानी और वित्त मंत्रालय में अपर सचिव डॉक्टर आनंदन उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए पर्यवेक्षक होंगे। एक रिपोर्ट।
उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव अगले महीने की 9 तारीख को होना है। पिछले महीने स्वास्थ्य कारणों से श्री जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद ये चुनाव कराना आवश्यक हो गया था। देश में ये 17वां उपराष्ट्रपति चुनाव होगा। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल करता है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA ने CP राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश B सुदर्शन रेड्डी विपक्षी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार होंगे। नामांकन पत्रों की जांच आज होगी। इस महीने की 25 तारीख तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। भूपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं चंद्रशेखर शर्मा।
लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। इसके साथ ही 21 जुलाई से शुरू हुआ संसद का मॉनसून सत्र भी संपन्न हो गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सत्र के दौरान 14 विधेयक पेश हुए और कुल 12 विधेयक पारित किए गए। श्री बिरला ने विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सांसदों द्वारा किए गए व्यवधानों के कारण समय की बर्बादी पर अप्रसन्नता व्यक्त की। उधर राज्यसभा में भी उपसभापति हरिवंश ने मॉनसून सत्र के दौरान विपक्षी सांसदों द्वारा उत्पन्न व्यवधानों पर नाराजगी जाहिर की। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि संसद का मॉनसून सत्र देश और सरकार के लिए बेहद सफल रहा।
देश के लिए और सरकार की दृष्टि से ये मॉनसून सत्र बहुत उपयोगी सत्र रहा है, लेकिन अपोजिशन MPs विशेष करके जो नए MPs है उसको बोलने का मौका नहीं मिला। उसका जिम्मेदार है अपोजिशन पार्टी के खुद नेता लोग। हाउस को इतना डिस्टर्ब किया, इम्पोर्टेंट बिल्स पे जितना टाइम एलोटेड था उसमें भी चर्चा में भाग नहीं लिया।
झारखंड विधानसभा का 4 दिन का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 का पहला अनुपूरक बजट विधानसभा में आज पेश होगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने मतदाता सूची में अनियमितताएं पाए जाने पर 5 अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। पश्चिम बंगाल लोक सेवा के 2 अधिकारियों सहित 4 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। इस संबंध में एक संविदा डेटा एंट्री ऑपरेटर को भी निलंबित किया गया है। निर्वाचन आयोग के आदेश पर इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। पंजाब में कल भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं को हिरासत में लिया गया। ये नेता केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता शिविर आयोजित कर रहे थे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय सांपाला सहित सभी भाजपा नेताओं ने इसकी निंदा की और इस कदम को तानाशाही और जनविरोधी बताया है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भेंट की। 3 दिन की रूस की यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी मुलाकात की तथा क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर विचार विमर्श के साथ द्विपक्षीय एजेंडे की समीक्षा की। डॉक्टर जयशंकर ने गैर शुल्क व्यवधानों और विनियामक बाधाओं को तेजी से दूर करने पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद भारत और रूस के संबंध विश्व के भरोसेमंद संबंधों में से रहे हैं। उन्होंने कहा कि भू राजनीतिक तालमेल, नेतृत्व संपर्क और भावनात्मक लगाव इन संबंधों का प्रमुख आधार रहा है।
The relations between India and Russia have been among the steadiest of the major relationships in the world after the Second World War. Geopolitical convergence, leadership contacts, and popular sentiment remain its key drivers. We reaffirmed our shared ambition to expand bilateral trade in a balanced and sustainable manner, including by increasing India's exports to Russia. This requires swiftly addressing non-tariff barriers and regulatory impediments.
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान की पहली परीक्षण उड़ान इस वर्ष दिसंबर में होगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कल नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अब तक गगनयान के 80% यानी लगभग 7,700 परीक्षण पूरे हो चुके हैं। इसरो की अन्य उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री नारायणन ने कहा कि इस वर्ष आदित्य L1 उपग्रह से 13 टेराबिट डेटा वैज्ञानिकों को उपलब्ध कराया गया है।
In another 2 to 3 months, we are going to have a 6,500 kg communication satellite of USA going to be launched using our launch vehicle. And till today, 433 satellites of 34 countries are done from India.
रेलवे आगामी त्योहारों के अवसर पर श्रद्धालुओं और यात्रियों की सुगमता के लिए 380 गणपति विशेष यात्री रेलगाड़ियां चलाएगा। रेल मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि महाराष्ट्र और कोंकण क्षेत्र में त्योहारों के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए मध्य रेलवे सबसे अधिक 296 विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। गणपति पूजा 27 अगस्त से 6 सितम्बर तक होगी। त्योहारों में संभावित भीड़ को देखते हुए 11 अगस्त से गणपति विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा रही है और धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ेगी। पंजाब पुलिस की साइबर अपराध शाखा ने देश भर के हजारों लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय म्यूल अकाउंट रैकेट का पर्दाफाश किया है। एक रिपोर्ट।
पंजाब पुलिस के साइबर अपराध विभाग की विशेष पुलिस महानिदेशक वी नीरजा ने बताया कि यह गिरोह पैसे के बदले लोगों के बैंक खातों का उपयोग विभिन्न साइबर अपराधों के माध्यम से अर्जित धोखाधड़ी वाले धन को स्थानांतरित करने के लिए इस्तेमाल करते थे। ये चारों पिछले 2 वर्षों से सोशल मीडिया के माध्यम से इस आपराधिक तंत्र को सक्रिय रूप से संचालित कर रहे थे और क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजों के माध्यम से विदेशों में अवैध धन स्थानांतरित करने के लिए पंजाब भर के विभिन्न बैंकों के सैकड़ों म्यूल खातों का उपयोग कर रहे थे। म्यूल खाता एक ऐसा बैंक खाता होता है जिसका उपयोग अपराधी खाता धारक की जानकारी के बिना या उसके मिलीभुगत से अवैध धन प्राप्त करने, स्थानांतरित करने या उसे वैध बनाने के लिए करते हैं। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
और अब खेल खबरों के साथ है मुकेश कुमार बल।
जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में कल 17 वर्षीय मोहसिन अली ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। डल झील में शिकारा चलाने वाले मोहसिन ने 1000 मीटर कैकिंग प्रतियोगिता में 4:12.41 सेकंड का समय लेकर ओडिशा और मध्य प्रदेश के प्रतियोगियों को हराया। उत्तर प्रदेश के विशाल कुमार ने पुरुषों की 1000 मीटर कैनो एकल में 4:30.59 सेकंड का समय लेकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिलाओं की 200 मीटर कैनो एकल स्पर्धा में ओडिशा की रश्मिता साहू ने 53.59 9 सेकंड का समय लेकर स्वर्ण पदक जीता और भारत ने बल्गारिया में आयोजित अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कल 2 रजत पदक जीते। महिलाओं के 55 किलोग्राम भार वर्ग में रीना ने रजत पदक, उधर 76 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में प्रिया मलिक ने भी रजत पदक जीता। इस बीच 2024 कैडेट विश्व कप चैंपियन और मौजूदा अंडर 20 एशियाई चैंपियन काजल ने 72 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में प्रवेश किया। प्रतियोगिता में अब भारत के पदकों की संख्या 5 हो गई है, जिसमें 1 स्वर्ण और 4 रजत पदक शामिल हैं। उधर कजाकिस्तान में एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में कल रुद्राक्ष पाटिल, अर्जुन बबूता और किरण जाधव ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं जूनियर वर्ग में मानसी रघुवंशी ने महिलाओं की कीट स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया, जबकि यशस्वी राठौर ने रजत पदक पर कब्जा किया। और प्रतिष्ठित डूरंड कप फुटबॉल का फाइनल कल नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब और डायमंड हार्बर फुटबॉल क्लब के बीच होगा। मैच कोलकाता के सॉल्ट लेक युवा भारती क्रीड़ांगन में खेला जाएगा। डायमंड हार्बर फुटबॉल क्लब ने पहली बार इस प्रतियोगिता में भाग लिया है और फाइनल में जगह पक्की की है।
मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, गुजरात, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में अत्यधिक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, पंजाब और सिक्किम में भी अगले 2-3 दिन तेज बारिश हो सकती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है फरहत नाज।
धन्यवाद निखिल। जीएसटी की नई दरों की मंजूरी का समाचार अधिकतर अखबारों ने मुख्य पृष्ठ पर दिया है। हिंदुस्तान और दैनिक जागरण ने लिखा है सस्ते सामान का रास्ता हुआ साफ। दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार 4 की जगह अब 5 और 18% के 2 स्लैब। पंजाब केसरी की सुर्खी है मंत्रियों के समूह ने दी मंजूरी, आम आदमी को बड़ी राहत। अमर उजाला लिखता है 90% वस्तुएं होंगी सस्ती। राष्ट्रीय सहारा और वीर अर्जुन की सुर्खी है अमरीकी टैरिफ के खिलाफ भारत के साथ चीन, कहा 50% शुल्क लगाने का पूरी तरह करते हैं विरोध। देशबंधु और जनसत्ता की खबर है असम सरकार का फैसला, सितंबर के बाद 18 साल से ऊपर के लोगों का नहीं बनेगा आधार कार्ड। दैनिक भास्कर के अनुसार रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले 8 लोग उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार। बिजनेस स्टैंडर्ड की सुर्खी है जोखिम में बढ़ोतरी, पिछले 9 महीनों में स्मॉल कैप फंड में रिटेल निवेश बढ़ा। दैनिक जागरण के कारोबार पन्ने की खबर है जून महीने में ईएसआई योजना के अंतर्गत 19 लाख से अधिक नए खाते जोड़े गए। अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और प्रशांत बालाकृष्णन नायर की केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह से मुलाकात का समाचार राष्ट्रीय सहारा ने प्रथम पृष्ठ पर सचित्र प्रकाशित किया है।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार और पश्चिम बंगाल में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। रेलवे आगामी त्योहारों के दौरान सुगम यात्रा के लिए 380 गणपति विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने कहा भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान का इस वर्ष दिसंबर में पहला उड़ान परीक्षण होगा। निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 2 पर्यवेक्षक नियुक्त किए, नामांकन पत्रों की जांच आज। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भेंट की और डल झील में शिकारा चलाने वाले 17 वर्षीय मोहसिन अली ने श्रीनगर में खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।